কাছে উল্টে চরম শরণ লভিবে, চরম শরণ গ্রহণ করেগা। দেখা যে কৃষ্ণ মেরে প্রভু হ্যাঁ, মে উনকা দাস হুম, ইসলিয়ে উনকে চরণ মে মে শরণাগত হতা হুম, কি হমারে জন্ম জন্ম কি পাপ রাশি কো হটা কর और मुझे अपने चरणों का दास बना दे। मैं संपूर्ण रूप से देह देव मोह माया ममता सब छोड़ कर आपके चरणों में शरणा कर सर्वधर्मान एक ये साधारण
शरणा कर सी,
और इससे ऊपर की क्या
चरम शरण
चरम शरण। मैं राधा जी की दासी कब की करी कर सकती, और उनकी मनोकृष्ट जो सेवाएं हैं कब और रति मंजरी रघुनाथ की दोनों राधा कृष्ण किशोर किशोरी जी पाशक खेला खेल पाशक
चौपड़
उसमें राधा जी ने कृष्ण को हरा दिया तो सखियां ताली बजाने लगी परम राधा जी की कृष्ण को छोड़कर के राधा जी की देवी से। यदि कृष्ण हार जाते हैं तो ताली बजाते हैं, राधा जी हार जाने से राधा जी के सुख में सुखी दुख यद्यपि वहां पर जगत में कोई राधा जी का जगत जैसा या कोई वहां पर प्रेमानंद के केवल लहरियां हैं, तो ऐसी चरण शरण जैसे कि राधा जी की ये जो राधा जी की सेवा जो करती है ये है चरण शरण। ऐसे ही मन को कैसे लाभ कर सकते दिन करिया राधा कृष्ण राधा जी के कुमकुमों से कृष्ण के चरण रंजित है, और राधा जी के चरणों का अलका छाप कृष्ण के शिव पर है। ऐसे जो राधा कृष्ण के चरणों की युगल की जो सेवा है चिरदिन करिया मैं चीर दिन से एक जन्म नहीं जन्मांतरों से ऐसे सेवा की मैं आशा करता हूँ। आज बसी आई ये अधमता और सामग्रिक रूप में सबके लिए ऐसा भाव होना चाहिए करता है। यह दास चीर दिन से ऐसी गाय आशा दिए हुए वो कहाँ चले गए, काम में चले गए? सोमनाथ जी उनको फुर्सत नहीं है, उनको फुर्सत ही नहीं है, कह दो सब काम फेंक दें, फेंक करके आ जाओ। यू आर ओके, you are coming from airport and today you are leaving, very good, I am happy that you have come and you have come both, very good। कहाँ चले जाते हैं? अब मत जाइए, उठा करके बल्कि रख दीजिए वो फोन पे। कोई जरूरत नहीं है प्रसाद की, हमसे प्रसाद कोई विश्व में नहीं दे सकेगा अधिक। इस प्रसाद और निकट चले आई, वो प्रसाद जाए क्या कहें, कोई जरूरत नहीं। और आप लोग सब निकट में आ जाइए तो अच्छा रहेगा, आजकल गर्मी का दिन नहीं है, ठंड का दिन है। और चले, आई एम हैप्पी टू मीट यू, यू आर कमिंग विथ मी, आई एम सो लाइक माई बॉडी गार्ड। I was thinking that where is my bodyguard?
तो भाई ये विशेष उन्नत भाव वाले भक्तों के लिए, साधारण लोगों के नियम, ये घास भूसा नहीं है, इसको समझो। सभी समझ ले गए ही ये, इसकी कोई बात नहीं, किंतु जो कुछ उन्नत होंगे वो लोग समझ करके इसमें कुछ रुचि। हम लोग इसी के लिए प्रचार करते हैं, हमारे रूपानुग वैष्णवगण इसी का प्रचार किया, और जो बातें हैं वो बहुत, वो तो सभी लोग देने आए थे, महाप्रभु जी रूप गोस्वामी इन सब चीजों को देने के लिए आए थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका संकलन करके अपने हृदयगत भावों को दिया है यहाँ। तो अरे दिशे जाओ आना तुम लोग, नहीं तो उठाकर फेंक दे, ये दो चार आदमी राधे। हे कृष्ण बड़ी आप रोते हुए ये कह रहे हैं, आप भक्तों के प्राण स्वरूप हैं, यदि आपने ऐसी यदि भावना हमारी नहीं की, ऐसी कृपा नहीं की, तो हम भी प्राण छोड़ दें। भगत प्राण है ना, आप भक्तों के प्राण हैं, इसलिए यदि आपने ऐसी कृपा नहीं की तो हम प्राण छोड़ दें। साधक भक्त ऐसा समझे भजन के समय में, ये भाव हमारे भावों की पूर्ति नहीं की, हम प्राण छोड़ दें। सचमुच में कहना नहीं, कहने से नहीं, सचमुच ऐसे भाव, ये भजन है। पामरे जुगल भक्ति कर, यद्यपि मैं पामर हूँ, पामर माने पा माने क्या होता है, पाए पाए जैसे समस्त अंगों का नीचे जैसे मैं हूँ, वैसे सब प्रकार से मैं निम्न कोटि का पामर हूँ। आप कृपा करके जुगल भक्ति दान कीजिए, पामरे जुगल भक्ति कर दान। भक्ति ही ने बोली ना करो उपेक्षा, मैं भक्तिहीन हूँ इसने मेरी आप उपेक्षा मत करो। मैं भक्तिहीन हूँ मैंने क्या, स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में वो भक्ति की उपलब्धि नहीं हुई है, कल सुन रहा हूँ वैसे हम कुछ करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं, किंतु स्वाभाविक रूप में हमारे अंदर में जो श्रद्धा होनी चाहिए पारलौकिक वो भी नहीं है। पारलौकिक श्रद्धा किसको कहते हैं, प्राण चले जाए भले खंड खंड बोटी बोटी कर दिए जाए, हमारा सारा धन संपत्ति परिवार सब कुछ हमको छोड़ दे, तभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा, हमारा सब कुछ समाप्त हो जाए, किंतु भक्ति की एक बूंद भी इधर उधर न जाए, उसके लिए हम सब कुछ अपना न्योछा और कर सकते। आ रहा है समझ में, भक्ति के लिए हम अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगे, अपने कुटुंबियों को भी न्योछावर कर देंगे, अपना जथा सर्वस्व सब कुछ न्योछावर कर देंगे, ऐसी भावना के रहने आए। तो मैं भक्तिहीन हूँ इसलिए आप उपेक्षा मत कीजिए, वो भक्ति जो चरम जो बात करी वो हम नहीं देंगे। मैं मूर्ख हूँ बात ये ठीक है, मूर्ख जने देह ज्ञान सुशिक्षा, मैं मूर्ख हूँ किंतु आप तो बड़े करुणाशील हैं, आप अहत की करुणा करने वाले हैं, इसलिए इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, शिक्षा की जरूरत है, ऐसी ज्ञान शिक्षा दे ही, ऐसी सुंदर शिक्षाएं दीजिए जैसे कि मेरे अंदर में ऐसी योग्यता है, और उस योग्यता के अनुसार में आप हमको वो जुगल भक्ति का प्रेम हमारे हृदय में दीजिए। विषय प्रपीड़ित विषय पिपासा प्रपीड़ित दास्य, यू कैन सेट बैक मोर इजिली एनी वेयर यू लाइक। विषय पिपासा प्रपीड़ित दास्य, भक्त तीन प्रकार के होते हैं, साधक भक्त, भाव भक्त और प्रेमी भक्त। हम लोग अभी साधक भक्तों की कोटि में भी नहीं है, ये पहले समझिए। हम लोग क्या हैं, हम लोग लपर झपर करने वाले, अभी ऊपर से अभी भक्त बने हुए हैं, किंतु यथार्थ में अभी भक्ति का बू अभी नहीं आया, अभी संदेह में हम लोग, नाना प्रकार के संदेह में, भक्ति की रक्षा के लिए हमारा सर्वस्व होना चाहिए या हमारे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भक्ति की जरूरत है? आ रहा है समझ? एक भक्ति हमारी हो इसके लिए यथात यत्किंचित रूप में हमारे ग्रास और आच्छादन, कपड़े और वस्त्र और भोजन इत्यादि की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें हमारी भक्ति के द्वारा मिल जाएंगी, हम जगत में सुखी हो सकेंगे, इसके लिए भक्ति की जरूरत है? या भक्ति के लिए हमको जितनी शरीर की आवश्यकता है बस उतनी की जरूरत है? ये दो चीजें हैं। साधन अवस्था में पहले होता है मैं सुखी रहूं, किसी तरह की विघ्न बाधा न आए, हमारे काम क्रोध इत्यादि दूर हो जाए, हमारे पाप दूर हो जाए, हमारे शुभ सब प्रकार के उदित हो। यदि हम भजन करते हैं और बीच में हमारे व्यापार में घाटा लग जाता है, नौकरी छूट जाती है, या कोई घर का मर जाता है प्यारा व्यक्ति, तो भक्ति उथल पुथल होकर के छूट जाती है, हम उसे छोड़ देते हैं साधन अभी आरंभ करने के पहले। तो ये अभी तो साधन भक्ति में भी नहीं आए, हम लोगों की भक्ति कुछ अभी ऐसे ही है। यहाँ भक्ति की घाटा है और जहाँ धन का घाटा है वहां पर हम धन का घाटा होने पर भक्ति को छोड़ दें, और जो थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं भक्त वे भक्ति की घाटा होने पर ये सब चीजों को
छोड़ दें,
प्रत्याग। तो हम अभी इस कोटि में अभी नहीं आए हैं, हम इस कोटि में हैं जो भक्ति भी रहे और ये भी रहे दोनों, किंतु अभी ये घटिया किस्म के अभी साधन भक्ति के अभी बहुत नीचे हैं। साधन भक्ति उसको कहते हैं जो भाव प्राप्ति के लिए जो साधन किए जाते हैं, अन्य अभिलाषिता श्लोक में जो दिया गया है उसको कहते हैं। इसके अतिरिक्त और कहीं उसकी दृष्टि साधक की नहीं रहती, ये कैसे बढ़ते 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 भाव के रूप में विकसित हो। इन लोगों को संसार में दुख होते हैं किंतु दुख इनको सबसाइड नहीं कर पाते, उनका मुख मोड़ नहीं पाते हैं भक्ति की तरफ से, और इसके बाद में जब और ऊपर उठ जाते हैं तो उनको संसारी किसी प्रकार का क्लेश भी नहीं, उसका गंध भी नहीं रहता। भाव भक्ति में कुछ कष्ट आएंगे किंतु वो कुछ बिगाड़ते नहीं, चले जाते हैं उसकी भक्ति को बढ़ाकर, बढ़ा करके चले जाते हैं, और साधन भक्तों की भक्ति को घटा देते हैं एकदम जो नीचे वाले, क्योंकि अर्थ इत्यादि दूर हो जाए, और उनका उनके नष्ट होने से जैसे सनातन गोस्वामी के साथ असरफियां आठ असरफियां चले जाने से क्या हुआ, आनंद होकर के अब हम निर्विघ्न होकर के भजन करें, और हम लोगों का चला जाता तो हम क्या करते हैं, लौट आते
पहले कमाल है फिर आ जाएगी।
हाँ, इसलिए ये भक्ति इतनी बहुमूल्य है कि संसार का सारा विश्व मिलकर के भी उसके एक कण के बराबर भी नहीं हो सकता, इसकी उपलब्धि उस समय होगी। और प्रेमा भक्ति की तो बात बहुत दुर्लभ, बहुत ऊंचे। यहाँ पर प्रेमा भक्ति की ये कार्य है, मैं मूर्ख हूं किस लिए, भक्ति की अपेक्षा संसारी रुपया पैसा और पास पड़ोस ये सब संसारिक चीजों का महत्व अधिक देता हूं। गुरु जी की सेवा सब समय इसलिए नहीं कर सकता जिन जिन सबको जो बना बनाया जो घर है ये बिगड़ जाएगा खेल, इसलिए 2400 घंटा नहीं रह सकते। और जो मठवासी हैं उनका क्या है, खेल बिगाड़ करके आए हैं जो उधर में हमारा समय नष्ट न हो, वो दिन रात किसी की चिंता में रहेंगे। तो जो लोग वैसे हैं जो संसारिक विषयों का सब समय चिंतन करते हैं उनके पास समय नहीं है, ये सब ये मूर्ख लोग हैं। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी इस मूर्ख की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं संसारिक मोह और ये सब चीजें हमें आ रही है, आ तो नहीं रही किंतु कह रहे हैं कि मैं उस चीज की महिमा उपलब्धि नहीं करता जिसको ये हमारे गोस्वामी लोग देने के लिए आए हैं, इसकी महिमा इतनी है जे कृष्ण झट बसीभूत हो जाएंगे, राधा जी बसीभूत हो जाएंगी, किंतु हम इस भक्ति की महिमा नहीं समझते हैं, इसलिए मैं मूर्ख हूं। देह ज्ञान सुशिक्षा, यह ज्ञान दीजिए कि मैं इस भक्ति को मैं कैसे समझ सकूं, इसका जो महत्व है कैसे समझ, यहाँ पर ज्ञान ज्ञान से नहीं,
भक्ति की महिमा,
भक्ति की महिमा, उस कौन सी भक्ति, प्रेमा भक्ति की महिमा के लिए बतला रहे हैं। विषय पिपाशा प्रपीड़ित दास, देह अधिकार जुगल विलास, विषय पिपाशा के लालसा में प्रपीड़ित हूँ, प्रपीड़ित माने पीड़ित, और प्रपीड़ित विशेष रूप से, कभी इधर से थपेड़ा आता है, कभी इधर से आता है, कभी इधर से, कभी इधर से, दसों दिशाओं से विषयों के थपेड़े आ रहे, जीवन मरण हानि लाभ जस अपजस ये सब संसार में चारों तरफ में लगा रहे। इस प्रकार से हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, सभी कुछ कम कुछ अधिक।
साधारण लोग तो निमग्न हैं, पर ये प्रपीड़ित कह रहे हैं, ये अंतर है।
तो ये कह रहे हैं, और देह अधिकार जुगल विलास, आप ऐसे मूर्ख जन को जुगल सेवा में अधिकार आप प्रदान करें। जुगल सेवा क्या, नित्य सेवा राधा कृष्ण की जो गोलोक वृंदावन में होती है, वो भी गोपियों की भांति, या आगे बतलाएं। ये हमारे अंदर में लोभ उत्पन्न हो जाए, इसमें हमारा अधिकार दे, ये लोभित अधिकार है, इसलिए वो लोभ प्रदान करें जिससे कि ये भक्ति में हमारा अधिकार हो जाए। फिर कुछ सोच करके चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, चंचल जीवन स्रोत प्रवाही है, काल सागर था, यह जीवन चंचल है, और इस चंचल जीवन में बहुत सी लहरियां हैं, क्या सुख दुख इत्यादि तरह तरह के जीवन मरण और सब तरह तरह के चीज, विशेष करके बुढ़ापा और बुढ़ापा के रोग इत्यादि, ये सब चीजें जो हैं, ये इसमें तरह तरह की चीजें हैं, और क्या है, इस सागर में, काल के सागर में बहुत से मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं,
कहते हैं धर्म के लिए
तिमिंगिल इत्यादि, बड़े बड़े जहाजों को उलाट देते हैं, बैल मछली इत्यादि, बैल को निगलने वाली तिमिंगिल मछलियां होती हैं, हमारे शास्त्रकारों ने पहले ये सब किया है, वो सागर के किनारे रहते थे, अगस्त ऋषि इत्यादि सब रहते थे समुद्र को पान कर जाने वाले, तो ये तिमिंगल मछलियां हैं, बैल मछलियां, ये बड़े बड़े उसको निगल जाती हैं, बड़े बड़े विषधर सर्प हैं जो चित्त को अस्थिर कर देते हैं, चंचल कर देते हैं, और हम लोगों का यह अनिवार्य भाव है कि हम काल के सागर में जाकर के विलीन हो जाएंगे, माने मर जाएंगे। तो काले सागरे धाय, हम दौड़ रहे हैं किधर, काल के सागर की तरफ में हम लोग दौड़ रहे हैं, गेलो जो दिवस नासी बया, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जो दिन चले जाते हैं वो फिर नहीं लौटते, अब याद करो अपने दिनों को, जो चले गए हैं फिर लौटेंगे, जो जीवन की कर्म की धारा है उसमें जो दिन चले जाते हैं वो फिर लौट करके नहीं आते, नाश। अबे कृष्ण की होबे उपाय, अबे कृष्ण इस जीवन में हमारा उपाय क्या है, हम तो सब समय इसी में रह गए, भक्ति तो हुई नहीं, और जीवन भी अब अंतिम आ गया, वृद्ध काल आवल सब सुख भाव, सब सुख चले गए, और पीड़ा बसे हो इनु का, तब पीड़ा किस चीज की, पीड़ा रोगों की पीड़ा, वृद्ध होने पर चल नहीं पाएंगे, पैर अकड़ जाएंगे, तरह तरह के कष्ट होंगे, ये वे कृष्ण की होवे उपाय, कृष्ण अब मेरा क्या उपाय होगा, मरने के करीब आ गए, तुम्ही पतित जनेर बंधु, आप कैसे हैं, आप पतितों के परम बंधु हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, खूब आरती के साथ में इसी श्लोक का पाठ करें। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत आराधा कांत नमस्ते। तो आप पतितों के बंधु हैं और मैं पतित हूँ, मैं पतित हो जाता हम लोग को अनुभव करना चाहिए कैसे पतित हैं, भक्ति से पतित हैं कि नहीं, और हम दूसरों के सुख में दुखी होते हैं और दूसरों के
दुख में सुखी होते हैं,
दुख में सुखी होते हैं। पास पड़ोस के लोग दुखी रहेंगे तो हमको सुख होगा। यदि केसरी जी अभी कांग्रेस के नीचे एकदम रसातल में चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो नीचे चले जाएं, वोट में एक भी वोट न पाए तो इन लोगों को बड़ा आनंद होगा। ये पड़ोस का मामला, हम लोगों का भी ऐसा, दूसरों के सुख में दुखी और दूसरों के दुख में सुखी होते हैं। कभी भी किसी की कोई सुख की बात नहीं करते हैं, अपने में ही बस लगे रहते हैं, किंतु हे प्रभु मैं जानता हूं कि आप पतितों के बंधु हैं और मैं पतित हूं, भक्ति से पतित हूं, अपने कर्मों से भी पतित हूं, ज्ञान से भी पतित हूं। कर्म ज्ञान कुछ भी नहीं, भक्ति का तो लेश नहीं, किंतु तो पतितों के बंधु हूं। और तुम ही तो करुणा जल सिंधु हो, तुम करुणा के समुद्र हो, अथाह समुद्र करुणा, उसमें एक कण यदि कृपा हमारे ऊपर में दे दोगे तो तुम्हारी करुणा कम जाएगी नहीं कम, इसलिए आप करुणा की एक बिंदु भी यदि हमारे ऊपर में छिटक दे तो हमारा कल्याण। ये आंतरिक ओर से इन चीजों को समझ करके ऐसी प्रार्थना, हम लोग बेकार कारण इधर उधर भटक रहे, इस सब के लिए ऐसा प्रार्थना कभी हृदय में होती है, इनको पढ़ने की कभी लालसा होती है, जिनको ये लालसा होती है उनका जीवन धन्य है। ये सब भक्ति के विचार, हम नहीं कहते जैसे आप लोग सब समय डूबे इसमें रहिए, क्योंकि हो ही नहीं सकता आप लोग नहीं, बल्कि अब हमको भी छोड़ देंगे यदि हम अधिक जोर देंगे, ये ऐसा करो और जब भी आऊं और यही सब सुनाऊं और आपसे प्रेम से दूसरी बातें सांसारिक विषय नहीं करते तो हमारे पास में कोई आएंगे, किंतु असल में हम लोग आते हैं इसी के, ये आप लोगों के अंदर में इतनी भी लालसा जग जाए सचमुच तो वैष्णव और गुरु की महिमा आप लोग समझ, चैतन्य महाप्रभु की राधा कृष्ण की महिमा को आप लोग थोड़ा भी समझ सकते हैं। तो आप तो करुणा के जल सिंधु हैं, हम ही भाग्यहीन अति अर्वाचीन ना जानी भक्ति लेश, मैं अत्यंत भाग्यहीन, संसार में भाग्यवान कौन व्यक्ति है बतलाइए, तो कौन सा व्यक्ति भाग्यवान है
जो भगवान को भजन कर,
हाँ बतलाइए तो,
भारत भूमि ते नो ब्रह्मांड में थी कौन भाग्यवान जी, कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज,
जिसने भक्ति लता का बीज प्राप्त कर लिया वे भाग्यवान, सुसौभाग्यवान कौन है
रूपानु का बीज
वो यदि भाग्य, उसे भी और सौभाग्यवान जिन्होंने अनुभूति कर ली भाव भक्ति हो गई है उसमें, उनसे भी बड़े सौभाग्यवान कौन है जिनकी वस्तु सिद्धि हो गई है और उस प्रेम में डूब उतरा रहे, वे परम सुसौभाग्यवान। उन लोगों में भी सबसे कौन है जो ललिता सखी इत्यादि के अनुगत जन जो है वो सबसे सौभाग्यवान। मैं भाग्यवीन हूँ अति अर्वाचीन, अर्वाचीन मैंने अर्वाचीन होता है आधुनिक, अर्थात विषय में लगा हुआ ये आधुनिक जो संसार की जो भावना है उसमें डूबा हुआ, ना जानी भक्ति लेश, मैं भक्ति का लेश नहीं है। लोग कहते हैं ये बड़े भारी महात्मा है, वो बहुत बड़ी भारी महात्मा ही है, ये भक्ति किंतु अभी भक्ति का ज्ञान नहीं है, ये भक्ति क्या चीज होती है, भक्ति की महिमा कितनी विशाल है, जिसकी एक कण पाने से मीराबाई क्या किया, घर बार कुल का नहीं छोड़कर मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ मुख ऊंचा करके मेरे तो गिरधर गोपाल और चल पड़ी बिंदा। उसका एक कण से भी कुछ उसके अंग में लगा। ये गोपियां, गोपियों की तो छोड़ दो, गोपियों की चिंता करते हुए हमारे रूप रघुनाथ इत्यादि कश्य बड़े वैभव वाले व्यक्ति थे, किंतु एक छिटक छिटका लग गया और कैसे इन सबको छोड़ करके कृष्ण भक्ति के लिए दीवाने बन गए। रघुनाथ दास गोस्वामी की परम सुंदरी स्त्री और कितना बड़ा वैभव,
इंद्र समय से
और सबको छोड़ दिया। हरिदास ठाकुर को देखो, उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं आई, लुभावने सब भाव आए, उधर एकदम दृष्टिपात ही नहीं। तो ना जानी भक्ति लेश, भक्ति का लेश मैं नहीं जानता। निज गुणेनाथ कर आत्मसार, भूत या भाव क्लेश। हे प्रभो, हमारे संसार के जो क्लेश हैं, जन्म मरण सुख दुख यश, इनको दूर कर अपने गुणों से मुझे आत्मसात कर लीजिए। आत्मसात मैंने क्या, आत्मा माने अपने साथ, अपनी भक्ति में एकदम डुबा दीजिए, अपना बना लीजिए, मैं आपका हूँ। सिद्ध देह दिया वृंदावन माजिए, सेवामृत कर दा, हमें आप कृपा करके हमारा सिद्ध देह प्रकाश करें। इसके अंदर में जीवात्, ये शरीर के अंदर में, मन के अंदर में एक सिद्ध जीव जीव होता है, उसे हम कृष्ण की नित्य सेवा कर सकते हैं। तो वो उसकी उपलब्धि हो, कठोर साधन करने से तब ये जा करके हो, और संसार के झपले में ये सब में जदि पड़े रहे। अभी मैं भी उसी में ही लगा हूं, कब ये सब दूर होंगे जो भजन कर, अभी तो मंदिर बनाएंगे, अभी ये करेंगे, क्या करेगा तू मंदिर खाक बना करके क्या करेगा, उसमें भी घृणा आ जाती है। ये लोग के कुछ कल्याण के लिए है, अपना इसमें अधिक कल्याण नहीं है, इसलिए हमारे रूपानुग वैष्णव ने ये सब के तरफ में अधिक ध्यान दिया, इसके तरफ में अधिक ध्यान। भक्ति विनोद ठाकुर चाहते तो मंदिर जैसा हम बना रहे हैं बनाते कि नहीं, बनाया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कितने हजार मंदिर बनाए, रूप गोस्वामी ने, ऐसे ही समझो। यदि रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूजा भी किया तो गिरिराज जी को शिला को लेकर के भाव से उसकी सेवा, इन सब चीज को समझना चाहिए। सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे, वृंदावन में सेवा मृत करो दान, सेवा मृत हमें दान कीजिए। पिया या प्रेम मत करी मोरे, सुनो निज गुणगान, पिया या प्रेम, प्रेम का प्याला मुझे पिलाकर मैं मत हो जाऊं उसमें, और मत होकर के आपके गुणगान करूं और आप सुने उसको और बड़े आनंदित हो। युगल सेवा या श्री राष्ट्रमंडल, और क्या, यदि आपकी कृपा हो तो मैं राष्ट्रमंडल में जुगल राधा कृष्ण की सेवा में मुझे नियुक्त कर दे, और सब कहीं नहीं, जुगल सेवा है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल कहाँ,
बंसीवट
और सब जगह जो है बिल्कुल नियुक्त कर दे। इसे भी और ऊंची चीज मांग रहे हैं, ललिता सखी का अजोग्या किन करी, मुझे ललिता सखी की अजोग्या किन करी बना, या मैं उनकी अजोग्या किन करी हूँ, विनोद उनके चरणों को धारण कर रहा है, किनको, ललिता सखी को, अथवा मैं ललिता सखी की अजोग्य किंकरी भी बन जाऊं, इसलिए हे राधा कृष्ण जुगल आपके चरण कमलों को मैं ग्रहण करता हूँ, प्रार्थना करता, ये सबसे ऊंची भावना। इस तरह से भावना में यदि आप लोग आ जाएं, यदि इनमें से दो चार भी आ जाएं, तो उनका भजन यही हम लोगों के प्रचार का विषय। और सब चीजें हैं जंगल काटने के समान, कुछ साधन भजन के लिए साधारण रूप में, किंतु ये चीजें साधन कैसे होगा, जब तक कि अपना संपूर्ण एनर्जी इसमें नहीं देंगे तब तक। अभी किसी प्रकार से थोड़ा सा भी लोभ उत्पन्न हो, जब यही लोभ परिपक्व होगा तो अपने आप मानस देह गेह जो कुछ हो हर पीनो तुहा पदे अनंत शिशु हे नंद छोड़ो तुम्हारी चरणों में सब कुछ आ ये भावना लीजिए एक कीर्तन कीजिए बिल्व मंगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा वो पिताजी का श्राद्ध का दिन था पिताजी मर गए और उसके जाति पाति के सब लोग वहां पर निमंत्रित थे सब लोग आए हुए थे और वो सात संस्कार करके सबको प्रसाद देना और ये महाशय जी हृदय में क्या बात थी कैसी भावना थी ये सबको छोड़ करके नदी उफन रही है बरसात का दिन जाड़े का दिन और एक मुर्दे को लकड़ी समझकर वो भी सड़ा गला उसके ऊपर में बैठ करके नदी को पार किया और कहीं जाने के लिए भीतर में घर में कोई गुंजाइश नहीं है और वे ऊपर से दीवार से लटकते हुए सर्प को रस्सी समझ करके और उस पर चढ़े और गिर गए ये कैसी भावना थी किस भावना से पागल हो गए और फिर कैसी भावना उनके हृदय में बदली कि उस चिंतामणि को भी छोड़कर उन भावों को छोड़कर के कृष्ण रंग में रंग गए और वृंदावन में चले आए अपनी आंखों को भी फोड़ लिया कौन सी भावना थी
प्रेम
अभी प्रेम नहीं हुआ था
भाव
अभी भाव भी नहीं आया था किस लिए घर से पागल होकर के उस बेस्या से मिलने के लिए गए और सड़ी हुई दुर्गंध भी उनको नहीं मालूम पड़ी पीछे से वही दुर्गंध मालूम पड़ी जब लौट करके आए देखा तो और सर्प को भी रस्सी मालूम उनको हुआ सर्प भी नहीं दिखा कौन से चीज में अंधे हो गए आंखें भी थी बुद्धि भी थी सब क्या था
जड़िया काम में
जड़िया काम न थी इसमें आदमी पागल हो जाता है और किंतु कौन सी ऐसी बात थी जो उनको इधर में फिर से ला दी अपनी आंखों को भी फोड़ दिया और कृष्ण कृष्ण कहते हुए वृंदावन हम लोगों को क्यों नहीं आता
बोला था उसको फटकारा था कि
तो इतने भाव से मुझे मिलने आया यही भाव कृष्ण जी के लिए होता
अच्छा तो उसके उसको तो चोट लगी हृदय में और उस उधर करके आ गया हम लोगों को ऐसी चोट क्यों नहीं लगती क्यों नहीं लगती क्यों नहीं लगती कृष्ण अपराध इत्यादि नहीं थे पूर्व जन्म का कुछ संस्कार था बस इसी के लिए वो रुका था जहां वो उसमें ठोकर लगी वो जो गिर गया बस उसकी भावना सब चली गई क्योंकि उस स्थिति तक पूर्व जन्म में था केवल बहुत साधन भजन करता था पूर्व जन्म में बस और कृष्ण के प्रति अनुरक्त भी था किंतु उसको पूर्व जन्म में ही किसी के प्रति ऐसी लालसा थी किसी स्त्री के प्रति और उसी लालसा से उसका भजन पूर्ण नहीं हो सका था अब इस जन्म में ये ऐसा ठोकर लगी और झट वो बदल गया उसको गुरु भी ऐसे मिल गए और कृष्ण रूपी गुरु भी मिल गए हृदय में चैत्य गुरु और उन्होंने घर में लेकर के ला दिया हम लोग ऐसे रोज घटनाएं होती हैं कितनी घटनाएं होती हैं किंतु हम लोगों को ठोकर नहीं लगती और ठोकर लग करके उसकी अनुभूति हो जाना और सब छोड़ करके और भगवान में भजन ये भी बड़े सौभाग्य की बात है पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होना चाहिए नहीं तो नहीं होता बहुत ही कठिन बात है
महाराज जी इसमें सुनकर ये जो जड़ी काम की जो आवेश था वही प्रेम में परिवर्तित हुआ या वो समाप्त होकर उसमें नया उदित हुआ
विषय में जो प्रेम रहता है वो प्रेम उसी का एक विकृत रूप है वो विकृत भाव दूर हो गया और शुद्ध हो गया प्रेम दो चीज नहीं है ये कामनाएं भी होती हैं, उस कामना का ये एक छाया या विकार है इस जगत में क्योंकि ये आत्मा से ही तो सब निकलती है यही जब शुद्ध होकर के भगवान में संपूर्ण रूप से लग जाएगा ऐसा ही भावना विषय के प्रति हमारी जो अभी भावना है विषय प्रति अभी अच्छे जी हमारे विषय में जैसे प्रति है ठीक वैसे जैसे कि बिल्व मंगल की उस बेस्या के प्रति आसक्ति थी, वैसे ही आसक्ति कृष्ण के चरण में हो गई तो बस काम, बस इसी की जरूरत है, इसको परिवर्तन करके उसमें लाए। तो ये बिना साधु गुरु की कृपा से हम लोगों का संभव नहीं होगा। ठोकर लगने पर भी ठोकर लगता है, हम विचार करते हैं, जब विचार आप लोग करते हैं हम देखेंगे ये जीवन क्या है। कभी कभी आता है ये क्षणिक है, आता है कभी ये बेकार का ही जीवन है। भजन करना ही सर्वस्व जीवन का ठीक है, किंतु फिर भी क्यों लगे हुए हैं, यहीं पर कुछ दुर्बलताएं हैं। वो दुर्बलताएं जब भक्ति में एकदम पूर्ण रूप से श्रद्धा निष्ठा हो जाएगी, ऐसे महात्माओं का संग धीरे धीरे होगा, तो वो सब चीजें दूर हो जाएंगी। और इसी की आवश्यकता है, भक्ति विनोद जैसी प्रार्थना आएंगी तब हमारा जीवन बदल जाए। कैसे रूप सनातन की, रूप रघुनाथ की कैसे कृपा हमारे ऊपर में, ललता और विशाखा जी की कैसे हमारे ऊपर में कृपा होगी, विशेष करके रूप रघुनाथ की कैसे हमारे ऊपर में कृपा हो। हे ब्रजवासी लोग, आप सभी लोग मिल करके हमारा कल्याण कीजिए, हमारे ऊपर में कृपा कीजिए, हमारी लालसा परिपूर्ण हो गया, ऐसे सब प्रार्थना हरि नाम करें। और ये सब प्रार्थना है अपने जीवन पर लाख लाख पर धिक्कार रहेगा, और फिर सौभाग्य पर भी बहुत गुमान होगा कि ऐसे वैष्णवों का संग मिल गया, ब्रजवासी लोगों का संग में ये कम नहीं। तो इस तरह से आप लोग भजन करें, यद्यपि ऐसी चीजें हम विदेशों में नहीं दे सकेंगे, उनमें तो ये जंगल साफ करना और कुछ कुछ भक्ति की महिमा बतलाएंगे, साधारण रूप से वैदिक भक्ति इत्यादि, वो इसी से अपने को सौभाग्यवान समझते, इसी को सुन करके। किंतु आप लोग जो बतला रहे हैं उनमें प्रवेश करने की चेष्टा करें। एक बात याद आ गई अभी, कुछ लोग मैंने अभी वहां आकर के दिल्ली में मैंने प्रतिवाद किया है, और उसका चारों तरफ में खूब प्रतिकार माने ये हो रहा है। जो मैंने कहा कि ये लोग वीसा और पासपोर्ट देने के अधिकारी कोई जगत में नहीं है, उसका अधिकारी कौन है, जैसे एम्बेसी होती है, अमेरिका की एम्बेसी अमेरिका के लिए वीसा पासपोर्ट देगी, और इंग्लैंड के जो लोग हैं वो इंग्लैंड इत्यादि का देश, जो जिस देश का ऑथर उस गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति है या ऑफिस है वही दे सकती है,
उस देश का वासी होता है महाराज,
उस देश का वासी और गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड,
दो बातें जरूरी।
इंग्लैंड के ये लोग हैं आकर के दे देंगे पासपोर्ट आपको, या यहाँ का बैठा आप दे देंगे, 1 करोड़ रुपया देने से भी नहीं दे सकते। तो ये लोग जो दे रहे हैं ये जालसाजी का अतिरिक्त क्या है, जालसाजी है, अपने को धोखा दे रहे हैं, दूसरों को यदि हम लोग केस कर दें, जैसे हम लोगों ने इनको इतना 5 लाख रुपया 5,000 रुपया 5 लाख रुपया दिया, और ये हमको गोलोक वृंदावन का पासपोर्ट ये दिया है किंतु हम नहीं जा रहे हैं हम भारतवर्ष से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, तो इनकी क्या गति होगी, हम अभी केस कर दे तो ये कहना है, ये तो हम जालसाजी के अतिरिक्त क्या है, दूसरों को भी ठगते हैं अपने को भी ठगते हैं। मैं तो ये सब खोल करके नहीं बोला, मैंने तो केवल थोड़ी सी ही दी, और यदि अधिक ये करेंगे ना तो हम ये खोल करके लेकर उन पर सच कुछ हम केस करवा देंगे, ये जालसाजी करते हैं ये। अरे साधारण जगत के लिए थोड़ा सा करो, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने पासपोर्ट वीसा नहीं दिया, महाप्रभु खुद आए वो नहीं दिया, उन्होंने कहा जैसे ये चीज पेपर तैयार करना है करो, रूप गोस्वामी ने क्या कहा, पेपर तैयार करने के लिए कहा ना ये प्रेम भक्ति तक चलो, ये सब पेपर तैयार करो हमारे ऑफिस में दाखिल करो, ये वहां के ये लोग हैं
ऑथराइज्ड पर्सन,
ऑथराइज्ड, पहले काम क्रोध लोभ मोह ये सब छोड़ो और अपने साधन भजन को वहां तक ले आओ, और ऐसे उत्कंठा जब जगे वैसी लालसा जगे किसके लिए, रगानुगा भक्ति के लिए, और वहां तक तुम्हारा पेपर तैयार हो जाएगा तुम अपने यहाँ इंडियन ऑफिस में उसको इंडियन ऑफिस वाले कौन, जो यहाँ के रहने वाले, जो इस जगत में रहने वाले
वैष्णव गुरु हैं,
वैष्णव सदगुरु हैं, जिनको ये प्राप्त है और सरकारी अधिकार प्राप्त है। कौन अधिकार देने वाला? रूप सनातन इत्यादि देने वाले हैं, महाप्रभु देने हैं, अधिकार देंगे, अनुभूति होगी उसकी, वो उस पेपर को अभी देखेगा,
फाइल चेक कर
और उनको बुलाएगा,
इंटरव्यू
करेगा। अभी हमारे इंटरव्यू में, अभी चपरासियों के इंटरव्यू में सभी लोग फेल हो रहे हैं, चपरासियों के, जो अभी वहां पर ढोकने नहीं देता। भीतर में जाकर के उसको फाइल को देकर के विचार करेंगे, और देने वाला वो कैसा व्यक्ति होगा, इन लोगों के समझ में नहीं आता है। इनकी रही सही भक्ति भी एकदम चौपट हो जाएगी, इनको विचार करना चाहिए, ऐसा स्थालन नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा करो जो अपराध न हो, तो ये लोग समझते नहीं। आप लोग इसके चक्कर में मत पड़े, यदि हो तो उसको लौटा देंगे और शुद्ध रूप में भजन करके भगवान का और किसी चीज की जरूरत नहीं। सब प्रकार की ऐसी कामनाओं छोड़ करके रूप सनातन जी के, रघुनाथ जी के चरण में प्रार्थना होनी चाहिए। जरा प्रार्थना सुना दो तो कोई।